سجدے سے پڑھنا سب لوگوں نے انت میں اور سب لوگوں نے مل کر کے بھی سنگار رس کو ہی آدھی رس مانا.
ابھی کل پرسوں دمپتی پر آیا
کہاں پر
آپ کے آپ کا ایک پرو رس سنگار مانے آپ کے رس مدھو رس
یہی سب سے شریشٹھ. کنتو کبھی کرن پوری جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھی رس نہیں ہے, رس پریم ہی رس پریم رس
مدھر اتیادی اس کے بلاس ہے پریم کے.
آ رہا سمجھ میں؟ اور سب اس کے بلاس ہیں, اس لیے پریم پریوجن ہمارے روپ گوسوامی کے جو کرشن داس کا بلاس گوسوامی انوگت ہیں انہوں نے کیا بتلایا, پریم ہی ہمارا پریوجن ہے.
پریم کا
ایک بلاس سب کل رکھو گے, سب بلاس اس کے ہیں, انگی ہی یہ پریم ہے اور وہ پریم سمبدھ ہے.
اور تو شریشتا کیول پریم کی نہیں,
ہاں اس لیے تو پریم پریوگ ہے.
وہ تو اپنے
اس کا بلاس کیا ہے نا سر, سب بلاس اس کے. تو انہوں نے کبھی کرن پور میں ایسا ویریشن کر کے بتلایا, جس پریم میں نہ سو رمنی نہ ہو یہ نہیں ہے کون ہے. دونوں میں جو پریم کا اسپادن ہے جو سوئم سمبت کو درسا والا وہ یہ ایک تم سرمو اور سب کا اسی کے لیے یہ کار. وہ پریم ہی ایک ماتر سمبیدیہ میں نے کیا ہوتا ہے, تم ہو اور میں ہوں یہ بھی نہیں رہ جائے, بس کیول رہے گا کیا پریم کا آسواد, وہی سرمور ہے وہی رس. اسی لیے کرشن کو کہا گیا رسسو رسراج کہا گیا نا رسراج, اور سیمتی رادکا کو مہابھاؤ. یہ دونوں مل کر کے ایک یہاں پر ہوتے ہیں اور باقی سب اس کے کبھی کارن پور نے بڑے سندر ڈھنگ سے اس کو ورن کیا. ان کو تو شلوک سب یاد نہیں, شلوک رہنے پر اس کی ویاکھیا کرنے سے سب بڑا سندر لگتا ہے, پڑھنا تم لوگ کبھی دیکھنا.
اچھا یہ دونوں کا ملن جو ہے رسراج کا اور مہابھاؤ کا جو ایک دوسرے کا ملن, یہ موہناج کا دیہ بھاؤ میں ہے
سمبندھ میں. اچھا دیکھیں گے ابھی یاد نہیں ملن میں سبھی کے لوگ, تو اسی کے لیے بتلا رہے ہیں یہاں کرشن. یہ جو سوئم سمبندھ جو بتلایا سوئم سمبندھ میں نے کیا वचन के द्वारा कहा मिल जाए,
केवल अपने हृदय में अनुभव.
एक साधारण चीज देखो और की तो बात क्या, अपना एक छोटा सा लड़का आया जो फुतरुओं पर चल रहा है कृष्ण चल रहे हैं और यशोदा जी उसे चलवन सिखला रहे चलाना. कृष्ण भी छोटा सा बच्चा है फुतरुओं पर ऐसे कर करके और चल रहा है. मैया क्या कर रही है, मैया उसके सामने बैठी है, आ जाओ लाला ऐसे कर रहे, हाँ ऐसे कर. कृष्ण बड़ी मुश्किल से फुतरुओं से थोड़ा सा चल करके आ गया तो वो पीछे थोड़ा सा सरक गए ना, सरक गए तो लड़का वहां खड़ा हो پھر آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹ کر کے آ جاؤ بیٹا آ جاؤ لالا آ جاؤ لالا, تو وہ پھر چٹکی بجانے لگی اور ہنسانے لگی اور تو وہ پھر تھوڑا سا اتساہت ہو کر کے چلا تھک گیا اس کے. تو دوسرا جی پھر سڑک گئی آگے उसका मन खराब हो गया बच्चे, अब यहां पर उसका फड़कने लगा,
वो फड़का है,
फड़कने लगा मैंने क्रोध से नहीं, रोना रुलाई जाने नैया हमको उपेक्षा हमारी कर रही है बुद्धि में नहीं, तो मैं गौकर से थोड़ा सा मुख बिछका दिया, अब रोने ना आंख में आंसू छत छर आए, बच्चे सुधा जी कहते अरे ना 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 इसी नहीं, रो मत रो मत, लाला का करके दौड़ करके गई और बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा करके और चुंबन किया और उसके नरो मत रो मत। अच्छा वो जो उनके हृदय में जो आनंद हुआ और आंखें उनकी भी छलछला आई, बताओ तो उनका आनंद को कैसे व्यक्त करेंगी, ये कितना आनंद हुआ उस बच्चे को बुद्धि में लेकर के व्यक्त किया जा सकता है, ये स्वन संवित है इसको कहते हैं जिसको वचन के द्वारा व्यक्त, भक्ति में भगवान का नाम करते समय भगवान के नाम रूप गुलीला का स्मरण आते ये सब आनंद जाता है, जिसने समस्त आनंद एकदम जगत का एकदम तुच्छ हो जाता है, इस आनंद को न व्यक्त किया जा सकता है न कहा जा सकता है, उसके कुछ गौण लक्षणों को बतला करके जो सुधा जी के आंखों में आंसू आ गए, गोदी में ले लिया और बच्चे को प्यार कर, बस इतना ही तक कहा जाएगा और क्या जो आनंद हुआ ये नहीं कहा जाए, तो वही कह रहे हैं कृष्ण के चरण कमलों में न जाने कौन सी ऐसी किमपी किमपी माने क्या, कोई एक ऐसी माधुरी है, कोई एक ऐसा आनंद है जो कि जिसको कहेंगे अनर्वचनीय और साथ साथ में ही कहेंगे वो स्वयं संवित्त, उसको कहा साधक लोग इसको समझने की चेष्टा, जो जितना ही अधिक इसको समझने की चेष्टा करेगा और उसी के अनुसार में समझेंगे उनकी विधाओं का उनका हृदय, पुस्तकों में भी कुछ दिया गया किंतु श्रवण के द्वारा जो चीज होगी ना वो पुस्तकों में वो सब चीजें साधारण के लिए वो नहीं समझ में आए, वही लोग समझेंगे जो समझने वाले हैं, तो वो जो आनंद की जो धारा है ना मंदाकिनी की धारा, आनंद की मंदाकिनी की धारा जो स्वतः मान सरोवर से निकल करके चल रही है वो हमारे हृदय में कौन कह रहा है, हिंदू मंडल जी का, इसलिए कह रहे हैं उनके हृदय में वैसी समृद्ध दशा आई होगी और सोच रहे हैं मुझे कृष्ण का चरण कमल इसीलिए वो कह रहे हैं। तो इसके तीन चरण हैं, एक है निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला पदाभ्याम, निखिल जितनी विश्व की शोभाएं हैं सबको तोड़ीभूत करती हुई समस्त नित्य लीलाओं का आस्पद है, आस्पद माने आधार कौन, कृष्ण के चरण कमल और कमल दीपी ने भी थी गर्भान कुशाभ्याम, कमल के जो बन है उसमें जो बीथी बीथी में है गैलरी, बीथी के गर्भ को तुच्छ करने वाले अंकुशाघात के द्वारा सर्व करने वाले अर्थात उस कमल के पन में फूल खिल रहे कमल के उससे भीनी भीनी सुगंध आ रही, बहुत कोमल बहुत मधुर हमारे उस पर झंकार करके नजर आ रहे हैं, वो हवा के झोंकों में खिल रहे हैं, ये कमल बन का अहंकार है किंतु इसको भी दूर करने वाले कौन है, कृष्ण के चरण कमल, ये दूसरा हुआ और प्रणमद अभयदान प्रौढ़ी का आधार पिताभ्याम, अब तीसरा चरण है जो लोग कोई उनके शरणागत हो जाते हैं उनको अभयदान करने में कैसे पूर्ण समर्थ है, और साथ साथ में आदृत है। समस्त जगत के लोग जानते हैं कि अपने जो शरणागत होगा कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा लोगों को विश्वास है। ऐसे किसी चरण कमलों में कोई एक अब इसकी
सर्वत्र कृष्ण के लिए ये व्याख्या है कि प्रणवदान अभय दान करने वाले यहाँ पर प्रेम प्रदान करने वाले
बहुत बहुत उसको मुक्ति दे देना भी, उसको धन संपत्ति देना भी अभय अभिपन्ना, उसको स्वर्ग दे देना भी व्यय, उसको मुक्ति दे देना भी, उसको वैकुंठ दे देना है, जैसे कि अजामिल इत्यादि को दिया, उसे अपना गुरु का धाम दे देना, इससे भी अधिक ब्रज का प्रेम देना। ब्रज के प्रेम में वो तीन प्रकार के प्रेम, उनसे भी अधिक हो गया गोपियों का प्रेम, गोपियों में भी किस प्रकार का प्रेम, ये सब वहां तक चला जाए। कहे हैं टीकाकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कमल भक्त बाल भक्त की टीका का अनुसरण करके ये लिखा गया, उसमें कहे हैं विलम मंगल जी सोच रहे हैं और ये प्रजन कराए महान सुख की शालिनी है, कभी तो रस विग्रह जो कृष्ण है उनके साथ में रास विलास को अनुभव कर रही है, किंतु मेरे समय से गोपियों को सुकृतिशाली कहना भी ठीक नहीं है, किंतु कोई संसार में भाषा या शब्द ही नहीं है जिसके साथ में कहा, जो कुछ भी कहेंगे वो गलत हो जाए। पीछे ये बतलाएंगे ये कृष्ण के चरण कमल का जो उपमा दिया है चरण कमल से, ये उपमा भी ठीक नहीं है। सर्वांश में कृष्ण के चरणों के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो कहते हैं कि ये सुकृतिशाली है केवल ऐसे ही, तो सोदा मैया बड़ी सौभाग्यशाली है। वो एक पद बोलते हैं ना राधा त्रिपुरा आगे तो कल भी सुना रहा था, राधा त्रिपुर भाग कौन तपस्या की कारण कारण वो तेरे गौरव वैष्णव लोग ये सब स्पष्ट नहीं करते, आप लोग भी मत कहेंगे तपस्या के द्वारा नहीं होता, कौन तपस्या कृष्ण ने की, कृष्ण ने कौन सी तपस्या ये बल्कि ठीक है। जो राधा जी की करुणा कटाक्ष को पा जाते हैं ये उसके तरह से मान लिया जाए, किंतु वो नहीं। मंगल ठाकुर जी कहते हैं क्या किसी जन्म में जन्मांतर में मुझे प्रभु के चरणार बिंदु कृष्ण के चरणार बिंदु का सतत सान्निध्य प्राप्त होगा, उनकी सेवा का सुयोग मुझे मिलेगा, ये प्रार्थना करें साधक मात्र ऐसा प्रार्थना करें, कृष्ण चरणों का कब मुझे सान्निध्य मिले, मैं कब उनकी कुछ सेवा कर सकूं, किसी लालसा से किमपु चेता कृष्ण पादम इसलिए कर। अब उसके लिए बतला रहे हैं कृष्ण के चरणों का प्राप्ति मैंने क्या, कृष्ण चरणों को प्राप्त करने से अथवा उनका कीर्तन स्मरण और चिंतन ध्यान करने से एक अनर्वचनीय माधुर्य का वो अनुभव और जिसको वचनों से नहीं कहा जाता, किनको अनुभव होता है जो अनुभव करना चाहता है, वैष्णव के अनुगत में अनुकूल कृष्ण अनुष्ठानम भजन करते हैं उनको जाएगा, सबको नहीं होगा, वो मेरा हृदय जानता है और मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए किमपि शब्द का प्रयोग किया गया, किमपि कृष्ण के चरणारविंद अनर्वचनीय है। अनर्वचनीय माने वचन के द्वारा तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद बल्ली में सर आनंद के संबंध में कुछ धारणा दी गई है। ये ऐसा है कि ब्रह्मानंद में डूबे हुए व्यक्ति यदि हैं, परमहंस और महामुनि लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी पहले भी नैर्गुण्य अपि परिनिष्ठिता नैर्गुण्य में प्रतिष्ठित इसी ब्रह्म में, सनक सनम सनातन भी इसी ब्रह्म के अनुभव में निर्मित थे, और भी बहुत से लोग हैं किंतु उनके चित्त को भी भगवान की लीला करता है और उनके चरण कमलों का सुगंध खींच लेता है, पर्वत खींच लेता है। ब्रह्मानंद देखिए ये क्या किसको कहते हैं ब्रह्मानंद, मनुष्य एक है वो अत्यंत सुंदर है, युवा पुरुष से लेता अभी युवा है और बहुत ही सुंदर है और सदाचारी है, सदाचार का पालन करने वाला है, बहुत ही सुशील है, दयालु है, महाबलवान है, विश्व में उसके टक्कर का कोई भी बलवान नहीं है और कुलीन है, कुलीन माने क्या उसके कुल के जन्म लेना चाहते साथ साथ में वेदज्ञ हूं, शिक्षित केवल नहीं कहा वेद को जानने से माने और कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ जानने वाला है वेदज्ञ, और उसको शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, निरोग है। यदि वेदज्ञ हो और सुंदर हो और रोग लग जाए तो निरोग होना चाहिए, और सब में समर्थ हो जो चाहे ना उसको करने में समर्थ है। यदि कोई उसका शरणागत हो जाए तो उसकी रक्षा करने में भी समर्थ है, ऐसा सब विषय में समर्थ हो, सुदृढ़ हो, महाबल भी जवान हो और विश्व की समस्त संपत्ति से भरे हुए धरातल का स्वामी हो, 14 भवनों का मालिक हो जाए, उसका जो आनंद है यह मनुष्य का एक आनंद है, ये मनुष्य का आनंद यह सब चीजें हो, ऐसे कल्पना कीजिए, ये ऐसे सौंदर्य महाबल निरो स्वस्थ युवा सब समर्थ और समस्त भूमंडल का एक छत्रा, ये मनुष्य का आनंद है। इसे आगे हुआ गंधर्वों का ये रहा, हुआ लोक पर रहने वाले गंधर्वों का जो आनंद है इसे सौंदर्य, और देवलोक में रहने वाले गंधर्व जो अलग है उनका आनंद और सौगुना, और इससे पितरों का आनंद और सौगुना, स्वर्गलोक के जो देवता हैं इनसे सौगुना और आनंद, और उससे सौगुना आनंद इंद्र को, और इंद्र से सौगुना बृहस्पति का आनंद, और बृहस्पति से सौगुना आनंद किसको, रचना करने वाले सृष्टि जो प्रजापति गण है उन प्रजापतियों का इसे सौगुना आनंद, और उससे भी सौगुना आनंद ब्रह्मा जी का आनंद, और ब्रह्मा जी का जो जितना आनंद और ये जितना भी बदलाया सब मिला करके एक कर दे, एक ज्ञानी जो विरक्त है इस संसार से उसका जो आनंद है एक कण के बराबर भी ब्रह्मा का आनंद नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है ऐसे परमहंस अमल आत्मा महामुनिन्द्र गुणों का जो आनंद है ये है ब्रह्मानंद, इसमें सुखदेव गोस्वामी भी पहली अवस्था वाले आए, और पानी अवस्था वाले सनंदन ये लोग भी आए, किंतु ये जो ब्रह्मानंद का कृष्ण के चरणार बिंदु का माधुर्य जिसके चित्त में आकर्षित है, कृष्ण के चरण कमलों की जो सेवा करते उसको जो सेवानंद भक्तों को होता है, ये ब्रह्मानंद उसके सामने खद्योग के सामने और वो सूर्य के सामने समान होता है। सूर्य के समान में जैसे जुगनू पोके जुगनू कीड़े होते हैं, जुग 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 करते हैं, दिन में दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा वो आनंद है। अब यशोदा जी का आनंद कैसा है उन भक्तों से, और यशोदा जी से भी उन गोपियों का प्रेम भी, और उनसे भी श्रीमती राधिका जी का आनंद लीजिए, कोई तुलना नहीं। अब देखिए महाप्रयाग्यवान महामुनिन्द्र मां की पेट में व्यास जी के द्वारा 16 वर्ष तक अखंड रूप में वेद परिषद शास्त्र कोई भी शास्त्र बाकी नहीं रहा जो नहीं सुन लिया, सबको सुन लिया और ज्ञान को उन्होंने धारण किया। सुनने से नहीं होगा, हम लोग सुन सकते हैं, धारण नहीं कर पाते, सत्य बोले यही नहीं धारण कर पाते तो और की तो बात किया, और सबको ये धारण करने वाले और ब्रह्म समाधि उनके पेट में ही लगती, धारण क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या बात है, संसार नहीं है, संसार के द्वारा धारण होता है, जिनका संस्कार है वो धारण करता है, पात्र होना चाहिए, सुन तो सभी देंगे, सभी सुनेंगे भी नहीं, कुछ लोग सुनते हैं बस वहीं से चला जाता है, कोई धारण करते हैं तो उनसे हैं ये कविकर्ण पुत्र छोटे से बच्चे, और बतलाओ तो महाप्रभु जी के चरणों में उठने लगे अंगूठा, और कैसा सुंदर सुंदर
उन्होंने स्फूर्ति करा दी, किंतु जिसको साधन करके धारण करना पड़ेगा तो उनको किस उपाय से,
इसलिए उनका संस्कार था, हम लोग को संस्कार बनाना पड़ता, संस्कार बनाते 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 हो सकेगा, जरूर होगा, जब उनको हुआ है हमारा भी होगा, ऐसा भाव रखना चाहिए, जरूर संस्कार हमारा होता है। तो उन्होंने जन्म दिया, और जन्म लेते ही या कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, संस्कार भी नहीं हुआ, नारी छेदन इत्यादि नहीं हुआ, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं, और जन्म में चल सकते क्या कर रहे हैं, चिंतन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मानंद का चिंतन करते हैं, उसमें डूब रहे हैं। चले व्यास जी को दया आई, दयाने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक, पहला मरहा पीलन और दूसरा अहोबकी अहोबकी, किसी पहलिए के माध्यम से उनको सुनवाया, अब तक ब्रह्म समाधि उनकी लग रही थी, और कान में ये व्यास सुनते ही ब्रह्मानंद छोड़ दिया, ब्रह्म समाधि छोड़ दी, और छोड़ करके व्यास जी के पास में आए, और बोला कि पिताजी, अब पिताजी कह रहे हैं, अब पिताजी आप हमको ये जो 2 श्लोक सुनाए ये कहां के हैं, उन्होंने कहा कि मैंने भागवत को प्रकाश किया है उसने कहा है तो हमको पढ़ाएंगे, हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गए, भिक्षा मांगने लगे, तब सदविधि परिपाणिता और परिप्रश्न के द्वारा उनको सिखलाया पढ़ाया, उसी को उन्होंने श्रीमद् भागवत में ऐसे व्यक्त किया है, परिनिष्ठ तो अपनी मेरे गुरु ने उत्तम श्लोक कवि गया गृहित चेता राजा से आख्यान जब अभी कमा, मैं तो जैसे ब्रह्म में परिनिष्ठित था, मैं ब्रह्म समाधि में सत्य में लीन रहता था, मुझे तो कोई शरीर का संसार का होश नहीं था, किंतु जब मैंने कृष्ण की लीला कथाओं को सुना, श्री कृष्ण के चरण कमलों से संबंधित उनकी लीला कथाएं कान में गई, मैं छोड़ छाड़ करके उनके पास आकर के भागवत की शिक्षा ली, इसलिए श्रवण कीर्तन में ही चरण कमलों का इतना उसकी महिमा है कि यह सब चीजें छूट जाती, इसलिए उन चरण कमलों की वंदना ये कर करके ये करें। उसमें तो जरूर एक मधु आनंद है जो उस ब्रह्मानंद को बतलाए ना, सबको आनंद को मिला करके कैसे कैसे बैठता है, वो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। शिष्य के प्रारंभ में सनक सनंदन सनातन, ये ब्रह्मा जी से मन से सृष्टि से उत्पन्न और जन्म से ही ये ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं और ये कुछ ब्रह्म में परिनिष्ठित थे। ब्रह्मा जी को भी पिता गुरु को उनको दया है, उन्होंने क्या कुछ अपने संस्कारों में प्रवेश कराकर वैकुंठ में श्री चरण कमल जो नारायण के हैं उनके चरण कमलों की नहीं पदारविंदों की माधुरी नहीं दर्शन किया बल्कि चरण कमल की माधुरी को से अर्पित की जाने वाली तुलसी और चंदन मिलाकर के भगवान के चरणों को जो अर्पित करी उसकी सुगंध जो चली बहुत दूर आकर के इस ब्रह्मांड में उनके नाकों में आई और नाक माने से क्या किया ब्रह्मानंद को मिले और चल पड़े वहां पर।
पिताजी से पूछा
कहां से आया
आपका पिताजी ने प्रेरणा दी
किसी को वर्णन किया है तस्यारविंद नयनस्य पादारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत विवरेण चकार तेषां संक्षोभ अक्षर जुषाम विचित्र अक्षर जुषाम अपनी अक्षर मैंने निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की मैं चिंता में था और स्वाभिवरेण कर्ण विवर से नाक से सुना क्या सुना उनके चरण कमल नहीं दर्शन नहीं किया उसकी माधुरी और अर्पित सुगंध वो वहां से चली आ रही उनको आप इसका चरण कमलों की माधुरी तो बहुत दूर की बात इसलिए कहते हैं तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद के जो मकरंद है किंजल तुलसी का जो मकरंद सुगंध वो आकर के अरु को संक्षुप्त यही नहीं उनको लुब्ध कर दिया, पहले लोभ लगाया फिर क्या किया क्षुब्ध कर दिया और फिर विमुग्ध कर दिया। विमुग्ध किया तब जब वहां पर पहुंचे और दर्शन किया उनके चरण, ऐसे उन चरणों की माधुरी है हम लोगों की तो बात ही किया। फिर कह रहे हैं श्रीमद्भागवत में बतलाया गया जतपाद पंकज परास विलास पंख्या कर्माश अनुगत उदग्रथयन दिशंत तत्वन निरुक्त मतयो मतयो निरुद्ध शोको भगवान। वो इन्होंने उपदेश दिया किसको, ये इन्होंने उपदेश दिया है पृथ्वी महाराज को, ये पृथ्वी महाराज को दिया गया। चरण कमलवान के कैसे हैं जब पाद पंकज और पलाश मैंने पत्ते पत्ते क्या है उंगलियां
विलास
और विलास कैसे है नख और उसकी प्रभा है चंद्रिका उसकी प्रभा उस पर आसक्त हो गए। इसका यदि कोई चिंतन करे उनकी कथाओं का श्रवण करे मन में स्मरण करे उनकी लीलाओं का गान करे इनका तो क्या हो जाएगा, ये जो संसार जो महाविकट है इसको तरा नहीं जाता, जिसका रुद्ध कभी भी जिसका प्रवाह रुद्ध नहीं होता, जन्म मरण में करते 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 लाखों कोटि जन्म जन्मांतर चले जाते हैं। जति लोग भी कौन जति लोग निराकार इत्यादि का भजन करने वाले जो जति हैं लोग संसार को पार ही नहीं कर पाते, किंतु भगवान के चरण कमलों का ध्यान चिंतन और गुणगान करने वाले व्यक्ति सागरी वासुदेव जी के चरण के कमलों का कर्तव्य भव सागर को पार कर जाते हैं और ऐसे आनंद की अनुभूति करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी भी कह रहे हैं और की तो बात क्या, परम भक्त हैं, क्या करें, जब पाद पंकज रज सिर साधुघात सिरप गज सगिरीश सा लोक पाले लीला तनु स्वकृत से परीक्ष जैसे सर काले तथक स भगवान मम के नुष्य करें। युधिष्ठिर महाराज जी भगवान के चरण कमलों की महिमा से पूर्ण रूप से परिचित है, उनकी सेवा करने वाले हैं, इनके पाद पद्मों की रज को चरण की रज को लक्ष्मी जी और ब्रह्मा शंकर जी लोकपालगण इंद्र इत्यादि मस्तक पर धारण करके प्राप्त होते हैं, ऐसे ही कपिल देव जी अपनी माता से भी ऐसा ही कह रहे हैं। और उसी जगह कहीं ये भी तस्वीर अत्यंत ब्रह्म का चिंतन करते करते ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना विशुद्ध गया आदित्य कृष्ण ने परम पदम पदम आपके चरण कमलों का निरादर करके ज्ञानी लोग बहुत ऊपर उत्तर के कृपा से क्यों चिंता कोई आना, इसलिए उनके चरण कमलों की महिमा इनके हृदय में स्फूर्ति होती है और उसको और भी आगे पाते हैं। हम अगले दिन बतलाएंगे आज यही तक के चरण कमलों की महिमा रहे पिता नाम पावने
Bye. Thank you.
अभी इसमें 8-10 श्लोक हैं। 6 महीने से हम लोग करीब करीब चेष्टा कर रहे हैं, फिर में गड़बड़ी हो जाएगी, तो सोचा था इसमें कर देंगे।
10 मास के लिए 11 महीने चल रहा
ठीक है। फिर हम लोग पीछे जन्माष्टमी के बाद में पुरुषोत्तम धाम से लौटने के बाद में बाकी जो रह जाएगा उसी का। कल नगर संकीर्तन निकलेगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। नहीं, कृष्ण के चरण कमलों का या राधा जी के चरण कमलों का ही वर्णन आएगा। अंगों में श्रेष्ठ मुखारविंद है, यह ठीक है, विश्व के लिए भी अंध जड़ आतुर सबके लिए चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण के चरणों के ही नाम की नौका लेकर के आए। अनादि काल से नाम की ये नौका है कृष्ण के चरणों। इसलिए जितने भी लोगों ने, जितने भी रसिक वैष्णव हैं या साधारण लोग हैं ब्रह्मा से, सब ने चरण की ही वंदन है। आशा महो चरण चरण वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु पादरे जब पाता है पाद पल्लव
पाद पल्लव लीला
स्वयं नहीं निश्चिमत भाव
नहीं
हाँ वो भी है
जगपाद पल्लव महत् परम
इसमें केवल पद ही पद है, साफ पद है। भगवान को पाने के लिए उनके चरणों का आश्रय लेना और भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए भक्तों का चरण का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। बिना कृष्ण के जो प्रिय हैं, भक्त हैं, परिकर हैं, या इसमें मध्यम श्रेणी के जो भक्त हैं, मध्यम
के पहले श्लोक में वंदे कृष्ण पदार बिंद जुगलम जस्मिन कुरंग प्रणय सती स्निग्ध अंग राजस दात्मिरम सरस्वणी मोबरी कस्तुरी काम विजुमा श्रीखंडम नखचंद्र काम सिंह हरि निर्व्याज मातम
सर्वत्र इसी का वर्ण। गोपियों के गोपी गीत के अंत में पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज देखो कृष्ण की चरण की जितनी भी महिमा है सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार में वर्णन किया। बिल्व मंगल भी अपने अधिकार के अनुसार में वर्णन किया। कृष्ण के चरण कमलों की जितनी महिमाएं हैं जैसे ब्रह्मा जी ने वर्णन किया और लोगों ने वर्णन किया, वो अपने भाव के अनुसार में वर्णन करेंगे। किंतु सनातन गोस्वामी जी कहते हैं जो भी वर्णन करे उस वर्णन में ब्रज का यदि भाव आया चरणों के साथ तो वो सबसे अधिक, और उसमें भी सबसे अधिक कौन है यदि गोपियों से संबंधित तो चरण है तो
प्यार।
इसलिए कृष्ण का संबंध किससे होना चाहिए, गोपियों का संबंध, तो वो कृष्ण की चरण की सबसे अधिक महिमा हो। इसलिए सबसे चरण की महिमा कब है अभी आगे बतलाया ना, जब ते सुजात चरणाम गोपी नाम नैनों कमीन नैनों पलाकित कम वो गोप संघावलम। इसलिए जितनी भी महिमाएं हैं कृष्ण के चरण कमल की सबसे महिमा वही है जिसको गोपियां अपने अंगों पर धारण करती हैं कृष्ण के और उनको अपने कुंकुमों से रंगित कर देती हैं। इससे बढ़कर के कृष्ण के चरण कमल की और कोई विशेषण नहीं हो सकता।
और कृष्ण के चरणों की और इससे बढ़कर के कोई महिमा नहीं हो सकता। कृष्ण के चरणों से या कृष्ण के अंकों के चरणों से जो गंगा जी निकली है, ये भी तो कृष्ण की महिमा है, जो कि भुवन त्रय को पवित्र करती है। ऐसी महिमा जो गंगा में बाढ़ आने पर एक सर्प उसमें डूब रहा था, उसके माथ पर बिल में वो था और पानी अब आएगा जाएगा एकदम उसके ठीक नाकों नाकों भर गया। अब सब चिंता कर रहा है और देख रहा है ऐसे, अब क्या करूं, अब तो इसमें पानी आएगा मरूंगा, अब कहां जाना चाहिए, कुछ उच्च भूमि में जाना चाहिए। इतने में गरुड़ आकाश उड़ रहे थे, उन्हीं की नजर पर गई और देखते ही गरुड़ जी एकदम छपके और झपट करके अपने पंजों से उसे पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसा खींचा जोर से, उसके तो प्राण हवा में उड़ने लग गए। और जिस समय उड़ने लगे तो उसकी पूंछ पानी में, इतने में उसका प्राणांत हो गया, शरीर से उसकी आत्मा का त्याग हो गया। और साथ ही साथ मरते समय गंगा जी का स्पर्श मिलने से क्या होता है, वो एकदम चतुर्भुज बन गया। साथ ही साथ गरुड़ ने देखा जी ये तो चतुर्भुज बन गया, तो फिर उतर आए आकाश से और उसको छोड़ दिया और उसके आकर के अपने पीठ पर उसे चढ़ा करके गंगा के चरण की महिमा कितनी है। शंकर की लुब्ध हो करके इसको सबसे में अपनी जदाजूट में धारण करते हैं, एक बुंद भी नहीं कहीं घर कर जाए। शंकर जी की इसी की महिमा है, उन चरणों की धोवन को सब समय अपने मस्तक पर धारण करते, ये भी महिमा है। किंतु ये महिमा फीकी पड़ जाती है कहां, ब्रज में। ब्रज में उनकी ये सब महिमाएं बहुत दूर चली जाती है, वहां पर सबसे यही उनकी है। तत्ते जात चरणम बरूहम स्तनेशु गीता शनै प्रिय गति कर्कशेश अथवा पुरुणा पुलिंद मृदाय कुटित जराग सिकुंकुमेन रक्त गंगा तनवन। यही उनकी सबसे अधिक कृष्ण इसी के वश में।
हम सब उसमें ऐसा वर्णन है कि चिंतन में कृष्ण के चरण कमल को सबसे पहले चिंतन किया जाता है और चिंतन करके मुखारविंद आश्रय होता है हमको, और राधा जी के सबसे पहले मुखारविंद का दर्शन होता है, इसके बाद में चरण कमल आश्रय होता है। ऐसा क्यों
ये समझो, नीचे से चरण से, चरण के बिना वो हो नहीं सकता। चरण किसी के पर आश्रित नहीं है, मुखारविंद आश्रित है चरण के ऊपर में। चरण न रहे तो मुखारविंद टिकेगा कहां, गिर जाएगा। इसलिए सब लोगों ने चरण की को ही सबसे पहले आधार मान करके चलते हैं। इसलिए ऐसा क्या तब वो रूप का जो है मुखारविंद वो टीके गाय होते हैं, तब स्थायी होगा, नहीं तो ठहरेगा किस पर। इसलिए जितने भी भागवत में देखो सब जगह वंदे अहम नंद ब्रजेश्वरीना आशा महो चरण रे ब्रह्मा जी का तब पूरी भागवत महा सब इसमें है इसमें। और जब पाद पलाश हत्या इत्यादि समय वर्णन किया है तो निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास पदा कमल दिखी निधि की गर्भार के साथ प्रणमत अभय दान प्रौधि गाढ़ाभ्यम किमप बहुत चेत कृष्ण पादाभ्यम किमप। कल हमने किमप की व्याख्या की हमने कृष्णदास कपिराज गोस्वामी इत्यादि के माध्यम से शिकाओं से मैंने कुछ पूछ लिया कि मत मैंने वही ब्रह्मानंद इत्यादि का वर्णन करके और कहा न जाने कृष्ण के चरण कमलों में कैसे एक माधुर्य की कादमी माधुर्य की स्वतस्वरी प्रवाहित हो अपने आप, न जाने उसमें कैसे उन्मादना है उसमें कैसा आनंद है, मैं इसको नहीं कर सकता हमारे लिए अनर्वचनीय है, किंतु मैं चाहता हूं कि वही जो आनंद है हमारे हृदय में सच में नित्य निरंतर प्रवाहित होता रहे, वही मार्ग कैसा उसी के लिए बताया मैंने, इसके संबंध में बताया था, कुछ थोड़ा सा रह गया था। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीला अस्पताल, यहां पर नित्य लीला लक्ष्मी, लक्ष्मी जो कहा यहां पर श्रीमत और सबको तो शोभा के रूप में लिया, किंतु अंतिम जो इसका जो अर्थ किया वो श्रीमती राधिका के लिए, इसी के लिए उन्होंने कृष्ण करणामृत का पहला श्लोक लिया और उसमें वो बतलाया, क्या है वो
लीला स्वयं
वर्षम लभते, कल सीता जी का उत्पाद देकर के बतलाया था कि नहीं
बतलाया,
नहीं बतलाया, नहीं लीला स्वयंवर रस किसको कहते हैं, श्रीमती राधिका जी कृष्ण के चरणों को देख करके महान उत्सव उनके हृदय में हो जाता है। जैसे देखो एक सीता जी का उदाहरण देकर के हम अभी जनकपुर में चलिए, आज जनकपुर में चारों तरफ में बहुत शोर मचा हुआ है, विश्वामित्र के साथ में दो राजकुमार हैं, अद्भुत श्याम गौरी जोड़ी है, आज तक जनकपुर में ऐसा कोई नहीं आया, ऐसा अतिथि कभी नहीं आया। राजा जनक जी को ज्ञान नहीं है, राजा जनक जी कैसे हैं, महाज्ञानी हैं, उनको वहां की स्त्रियां करनी है, इनको अकल से संबंध नहीं है, इसने न जाने क्या इस बूढ़े अवस्था में इसने प्रतिज्ञा कर दी सीता जी की शादी उसी व्यक्ति से होगी जो शंकर जी का यह धनुष उठाकर
प्रसन्न चढ़ाएगा
और प्रसन्नता कटा देगा और उसको उठा लेगा। बड़े बड़े इंद्र इत्यादि देवता है, रावण भी आया रात में और अजमाने लगा, जब वो धनुष उठाया थोड़ा सा तो एक तरफ से एक कोना थोड़ा सा उठाया और इतने में छिटक गया धनुष हाथ से और उसी के नीचे दब गया, और धनुष दब गया तो अब उठ ही नहीं सके, वहां करने लग गया, शंकर जी को स्मरण किया, कहे तुम यहां पर क्यों आया, शंकर जी को जाओ आज बच गया हमको स्मरण कर लिया, और किसी प्रकार से धनुष को थोड़ा सा ढीला कर दिया, निकल करके भागा दिया, अब नहीं आएंगे यहां। दस सहस्त्र रूप एक ही बारह, दस हजार बड़े 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 पलवान लोग एक साथ उठाने लगे, नहीं उठा, देवता लोग भी सीता जी को देकर के ललच रहे, नहीं उठा। अब ये करिए, ये इतनी सुंदर जोड़ी आई है, उसमें जो श्याम लड़का है अद्भुत है, आज यदि वो प्रतिज्ञा नहीं बूढ़ा किया होता तो आज सभी मिलकर के हम सीता के साथ में उसकी शादी करते, आज उसको कोई समझाने वाला नहीं है ये प्रतिज्ञा छोड़ो, किंतु वो तो प्रतिज्ञा क्या किया है, जैसे दशरथ जी कहते हैं रघुकुलरी दिया प्राण जाय बरु, तो वैसे इन्होंने भी प्रतिज्ञा कर दी है, प्राण जाएगा किंतु हमारा अब ये प्रतिज्ञा सीता जी कुंवारी रह जाए, मैं समझ गया इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं, वीर वही मैं जा, अब कोई पृथ्वी में कोई वीर नहीं, मैं समझ गया। लक्ष्मण जी उसी समय उठ करके खड़े हो गए, वीर नहीं है खुद बंसी, बच्चों के साथ भी सामने रहते हुए तुम ऐसी करते हो, अभी कहो तो मैं पृथ्वी को लेकर के गेंद की भांति उड़ जाऊं और इस मंडल को मैं पीस डालू, ये धनुष क्या बात है, विश्वामित्र जी ने आंखों के इशारे से और रामचंद्र जी ने उसको बैठा दिया, उसके अधर कांप रहे हैं। वहां की नारियां सब देख रही हैं, ये कैसे बूढ़े को मनाया जाए जी इसके साथ में ही शादी है। सब जगह इसी की चर्चा करते। दूसरा दिन आया, रामचंद्र जी बगीचे में गए, वहां से देख करके आए। सवेरे विश्वामित्र जी ने कहा जरा धनुष को भी तो देखाना है, धनुष जल के देखना के लिए हम लोग आए, देखो तो ये कैसा धनुष है। रामचंद्र जी भी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी को साथ लेकर के और उनके चरण की धूली लगाई विश्वामित्र, और चरण धूली लगा करके मानो इसी के बल पर चल रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड जी की धूली को धारण करके पवित्र हो जाता है। आज वो विश्वामित्र की चरण धूली ले रहे हैं और लेकर के वहां पर पहुंचे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की तरफ में इशारा किया। लक्ष्मण जी वैसे शासन जैसा होता है ना, वीरासन, वीरासन से पृथ्वी को दबा दिया कि कोई समझ सका, कोई समझ नहीं सका, और नहीं तो धनुष के साथ साथ में पृथ्वी भी जाएगी, इसलिए उसको दबा दिया। इन्होंने रामचंद्र जी पलक झपने के पहले एक सेकंड नहीं लगा, कब धनुष को उठाया, कब पतंग चढ़ाया और कब धनुष उठ करके त्रिखंडों में महान शब्द हुआ, पृथ्वी कांप उठी। इधर तो सब लोग भयभीत हो गए, किंतु वो जो जनकपुर की जो मैया थी आनंद का एकदम समुद्र बह गया। आज भगवान ने हमारे मन की मुराद, सीता जी को उस समय कैसा लगा होगा, सीता जी को सभी लोग श्रृंगार कराने लगे, आनक एकदम सिर तक उनका श्रृंगार, तुल्हिन सजाया, हाथों में बर्फी माला दी। सीता जी जब चल रही हैं, दोनों तरफ से सखियां पकड़ी हुई हैं, सीता जी का आनंद के मारे हृदय और कांप रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं, फूल की माला भी कांप रही है। ऊपर देखती हैं कलखी से थोड़ी सी राम की तरफ, कोई देख न लीजिए मैं उनकी तरफ में देखती हूं, कितनी उमंग, कितनी उच्छा। और उसी समय में जब धीरे 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 एक एक पग सखियां को लेकर चलती, अब चलने की सामर्थ्य भी नहीं, जितनी निकट जा रही है जिसके लिए सब कुछ, और उससे निकट जाते ही और भाव में आविष्ट हो गई, हाथ नहीं उठा सकी तो वरमाला देने के, सख्य ने अपना हाथ से जोर लगा करके उनके हाथ को ऊंचा किया और उनके गले में दिया। उस समय में स्वयंवर में जब उनके गले में माला दे रही होंगी, उस आनंद की कल्पना तो कीजिए, इसको कहा जा सकता है उस आनंद का कोई वर्णन कर किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में भी, आंख में वर्णन की शक्ति नहीं और जिह्वा में देखने की शक्ति नहीं, वर्णन कौन करे। यहां पर कवियों की जितनी कल्पनाएं उपमाएं हैं सब कोई मां काम नहीं। दलीला स्वयं वर्षम, ये तो राधा उनका तो एक बार हुआ है ना स्वयंवर में, और राधिका जी का क्या होता है, नित्य ही लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। राधिका जी नित्य नवा नवाय मान नहीं
बोलते, एक उदाहरण
कोई उदाहरण ही नहीं है जगत, सब वो झूठी हो चुकी है, यदि कोई उपमा भी है ना सब झूठी हो गई है, ऐसी उपमा है, इसकी कोई उपमा नहीं। तभी उन्होंने थोड़ी सी कमल की उन्होंने जो उपमा दी उसी के लिए ये कह रहे हैं, वो हमने न कहा ना, यहां पर हमने जो कहा भक्त के कृष्ण पादाम पूजा ध्यान, कृष्ण के चरण कमल, ये जो पादांग अंबुज माने कमल उपमा दी, ये गलती से लेगा। किंतु हृदय से निकल गया। किंतु उपमा कमल के साथ में कृष्ण के चरणों को दी जा सकती है कि नहीं, जो कि लीला स्वयंवर रस है। किसके लिए? लक्ष्मी के। यदि इसके बदले में प्रबोधानंद सरस्वती होते तो वो क्या लिखते? वो लिखते के वो लिखते वंशी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम प्रचंत पीत वसनम वजराज सोनो जस्या कटाक्ष सरघात निमुच्छ तस्य तंग राधिका परचरामी कदा यतकिं करी बहुसा खलुका दुबानी नित्यम परस्य तुष्ट शिखंडम जस्या कदार स्निधे विष्णानुजाया पुण्य भवनांगन मार्गिनी। मार्गिनी किस लिए होना चाहते हैं? किस लिए मार्गिनी होना चाहते हैं? मार्गिनी के बहाने भी वहां पर पहुंच जाए तो वो देखेंगे, क्या देखेंगे? कृष्ण की किंकरियों के चरणों में वो पर ब्रह्म बार बार प्रणत हो रहा है, प्रार्थना करता है कि उसको उनसे मिलना है। तो वो ये तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह से आस्वादन करते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग साधु को भी बिंद मंगल जो बतला रहे हैं, बिंद मंगल अपने प्रेमावेश में चरणों की उपमा कमल से दे रहे हैं, किंतु जब चरणों की विलक्षणता के प्रति इतनी महिमा, विशेष करके गोपीनाथ कुछ कुमकुमे ने इत्यादि उपमा जब तो उनके हृदय में आया तब उन्होंने सोचा कि मैंने भूल किया जो कमल के साथ में इस उपमा थी। क्यों? ये जो अभी जो तीन जो विशेषण बतलाए, कोई भी विशेषण कमल में नहीं है। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदा, ये कमल में कमल विपिन ने बीठी गर्भ सर्व कथाभ्याम क्यों नहीं है, इसको अभी यह पर बतला रहे हैं। इसके लिए बतला रहे हैं, देखो पहली विशेषता उन्होंने बताया। अब कमल में और चरण कोण में हम देखें, निखिल लिखल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलाभ्याम, कमल इस जगत में है, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है, ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं अनगिनत अनंत, वो अंडे के रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड कर्णाद्यशायी के विष्णु के एक एक लोम कूप में होते हैं, और उनके लोम कूप कितने हैं, और उसमें ये रूप उनमें से कुछ निकल करके कर्णाद्धि समुद्र में विशाल विशाल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, तैर रहे हैं। कितने ब्रह्मांड है इसका कोई भी आकार नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं गिन सकते हैं, इतने हैं। और उस ये सब है क्या? प्राकृत और अप्राकृत इन लोगों में जितनी भी शोभा संपत्ति, ये सब लक्ष्मी जी का एक कटाक्ष मात्र है। जो वृंदावन में जिसमें बतलाया गया ना पहला श्लोक
चिंतामणि,
नहीं इकतीसवां का, व्यथिते विद्यथिते अधिकम जन्म ना प्रजा प्रयति इंदिरा, सब समय ये लक्ष्मी जी वृंदावन की सेवा करती। कौन लक्ष्मी जी? जो कि सबकी आराध्य बनी हुई ब्रह्मा शंकर सबको ये आशीर्वाद देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली लक्ष्मी आज वृंदावन में सेवा कर रही हैं, कुंजों कुंजों में वृंदावन की भूरी कन्हा की सेवा कर रही हैं। तो ये कितनी संपत्ति है, ये सुखा है।
वहां पर देखा है कि वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी सर्वपूज्या आज वृंदावन में आकर के दासी बनी, सेवा कर रही
है। तो वृंदावन की सेवा कर रहे
हैं।
एक नहीं, सहस्त्र वहां की गोपियां इन सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न है। वो लक्ष्मी जी सब समय कृष्ण के प्रकाश के वैभव प्रकाश जो नारायण है उनके चरण कमलों का संवाहन करती हैं और सब समय अपने हृदय में धारण करती हैं। कृष्ण का नहीं, उसके लिए तो कदलच करके रह जाती हैं। ये नाग पत्नियों ने ऐसा प्रकट किया, गलत करके रह जाती हैं। वृंदावन में उनको अधिकार नहीं, कश्याम भाव अश्चन देव बिंद, बस यही तक। लक्ष्मी भी वृंदावन के राशि इत्यादि में नहीं आ पाती है। तो ये सब कृष्ण के चरण जुगल जो है, ऐसी ऐसी लक्ष्मी जी, कितनी लक्ष्मी, इनकी दृष्टि से अनगिनत लक्ष्मी, गोपियों को सब लक्ष्मी बना करके वो ये कहते हैं इन गोपियों के लिए कृष्ण के चरण कैसे हैं, आस्पद है। ये सब उनकी सेवा करती है, किनकि कृष्ण के चरण कमल के नख को उसके प्रकाश का निर्वंचन करती है अपनी कोटि कोटि प्राणों से। जैसे राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु निर्मंचनो उपकरणी कृत ललिता जी के देकर कोटि कोटि प्राणों को राधा कृष्ण के चरण कमलों पर शोभा पर बार गया। ऐसे ही उनके चरण कमल गीता में भी कहते हैं ये विश्व की जितनी भी विभूतियां हैं वो कृष्ण के चरणों की एक एक चरण है। तीनांश विभूति जो है, तीन त्रिपाद विभूति वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन और एक पद में आंशिक विभूति, ये समस्त ब्रह्मांडों की जगत विभूति स्तम सप्तम श्रीमद ऊर्जितम मेरी होगा तत्त एव अवगछम मम तेजो अंश संभव। ये कृष्ण के चरणों के कमल के ये तेज के समान है। किंतु ये लक्ष्मी जी चंचला है इस विश्व में और ये नित्य रूप में फिर कहां रहती हैं, नारायण जी के चरणों, कृष्ण के चरणों के लिए तो ललचती हैं, उन्हीं के चरणों में नित्य श्रीमद् भागवत में उनको उपाख्यान है। समुद्र मंथन के समय में बहुत से चीजें निकली, 14 रत्न, उसमें से एक कमला जी हाथों में कमल लिए हुए उसमें से निकली और देखने लगी पति ढूंढ रहे हैं
किसके गले में,
किसके गले में वो माला दें, कमल फूल की माला कभी मलिन नहीं होने वाली। शंकर की देखा, शंकर की तरफ में देखा, ब्रह्मा जी के तरफ में देखा, इंद्र की तरफ में देखा और देवताओं उनमें दोष ही दोष, किसी में कोई गुण नजर नहीं आया। यदि गुण भी नजर आया तो थोड़ा सा गुण और बाकी सब दोष, इसलिए किसी के गले में भी माला नहीं थी। प्रतीक्षा कर रही थी दादी, इतने में ही देखा जब गरुड़ जी वहां पर उपस्थित और गरुड़ के पीठ पर वो प्रभु जी पधारे, उसी समय देख करके उनके गले में। इस तरह से भी देखते हैं कि लक्ष्मी माने हैं और किसी का आचरण करती चंचल है, किंतु वही लक्ष्मी जी उनके चरणों में सब समय स्थिर है।
ये जो कंचन लक्ष्मी जी हैं उनका ये प्रकाश है, वो यथार्थ लक्ष्मी जी नहीं है। जैसे माया की सीता जी, ऐसे लक्ष्मी जी के ये प्रकाश जो संसार में एक कभी एक मिनट रहती है, कभी कुछ दिन रहती है, कभी उसको छोड़ करके उसको किंतु कृष्ण के चरणों में माने उनके वैभवों के चरणों में नित्य रूप में स्थिर रहती है। इसलिए समस्त स्वभावों की संपत्ति की मूल जो आधारशिला है उनके चरण कमल है। दूसरी विशेषता इन्होंने बतलाया सौंदर्य माधुर्य, पहला हुआ ऐश्वर्य के शोभा, दूसरा बतलाया सौंदर्य के माधुर्य की, सौंदर्य की ये कमल में नहीं है, जो कृष्ण के चरणों में समस्त विधाओं का आस्पद है ये कमल नहीं है, कृष्ण का चरण कमल। इसलिए कमल की उपमा हमारा देना, यदि ऐसी बात होती सनक सनंदन सनातन इत्यादि से जगत के किसी कमल के फूल के द्वारा आकर्षित हुए, सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए, वो लोग नहीं आकर्षित। इसलिए कह रहे हैं कमल का जो वन है वो रूप रस गंध और स्पर्श के द्वारा पंचेंद्रियों को अपनी तरफ में आकर्षित करता है, बद्ध जीवों के लिए, मुक्त जीवों के लिए या साधक जीवों के लिए नहीं। उसमें कमल में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए कमल कहते हैं, कमला से यहां पर कमल, और हाथों में भी कमल लेकर के रख। किंतु इन कमलों के भी गर्भ को खर्ब करने वाले कृष्णचंद्र जी का जो चरण कमल है, ललाई में भी, सौंदर्य में भी, सौगंध में भी, रस में भी, सब विषय है, इसलिए इनके साथ भी वो तुलना नहीं हो सकती है। तस्मिन जयु परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणों चलयन सहस्ति। कहते हैं मुनि लोग जैसे सनक सनंदन इत्यादि जगत के सौंदर्य को वो नहीं देखते हैं, कमल कमल की तरफ में उनका दृष्टि नहीं जाएगी, वो तो महापितराग थे और ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी। ब्रह्मा जी ने कृपा करके देखा कि हमारे पुत्र के रूप में आया है, इस पर कुछ कृपा की जाए, भगवान की कुछ चरण कमलों की महिमा समझे, इसलिए कुछ अपनी शक्ति के द्वारा संचयित करके और उनके भगवान के चरण कमलों में जो चंदन मिश्रित तुलसी का जो मकरंद था वो हवा में लगा करके और इनके नाकों तक पहुंचाया, उस मकरंद को अटक सुगंध को उघ्राण करके मुक्त हो गए। कहां कहां से जा रहे, ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कहां से आ रही है सुगंध, उन्होंने कहा भगवान के चरण कमलों में अर्पित ये तुलसी जी का ये मकरंद है, बस उसी के अनुसार। और जब वहां गए नित्य काल के लिए अपना मन, जगत का कमल ऐसा कर सकता है ये कमल के लिए संभव, पर नहीं भगवान के चरण कमलों के। यदि नारायण का ये है तो कृष्ण के चरण कमल, लक्ष्मी जी सब समय उन चरण कमलों की सेवा करती हैं, किंतु आज वो भी पागल हो गई और उनको छोड़कर के नारायण को वृंदावन के बेल वन में आकर के तपस्या करनी है, कृष्ण के चरण कमलों को की सेवा प्राप्ति के लिए, किंतु अभी तक पाया कि नहीं, कोई ठीक नहीं। इसलिए कमल में ये स्निग्धता शीतलता नहीं है, बल्कि कमल में दाहकता है। दाहकता कैसे, दाहकता इसलिए ये मत पैदा करने वाला, कमल की माला कोई पहन ले खूब सुंदर बन जाए, उसको काम रोग उसके हृदय में प्रवेश कर जाए और उसको ताप देने लग जाए, ये उसका उद्दीपक है, काम का उद्दीपक।
मालती
ये सब जगत के फूल ऐसे ही, सभी यदि अपराधित हो तब तो ठीक है, और कृष्ण के चरणों में यदि अर्पित कर दिए जाए तो उनका कुछ मूल्य है, नहीं तो ये काम को बढ़ाने वाले। नमाम ते देव भागवत श्रीमद भागवत नाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नता प्रपन्नता को उपशमम एवं आपपत्र जन्मूल एक जतयो अंजसो पुरुषंसार दुखम बनिगुत क्षिपंति श्रीमदभागवत का तीसरे स्कंद का भगवान के चरण कमल तीनों तापों को दूर करने वाला स्वर्ग का अमृत भी ऐसे ही समझो कि तापों को बढ़ाने वाला है दुख देने वाला है किंतु कथामृत जो है इसे कोटि गुण श्रेष्ठ है। उसी तरह से कहते हैं एक हिंदी के कवि हैं नारायण स्वामी बड़े रसिक बहुत से उनके पद हैं उसमें कह रहे हैं देखो कमल पत्र कैसा है भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि जुगल चरण बस दस अंगूरियां दसधा पक्ति सुहार नखन ज्योति लक्ष चंद्रमा गयो गगन उड़ा। चंद्रमा जी ने देखा कृष्ण के चरण कमलों की नख चंद्रिकाओं को और उसे जो चंद्रिका छिटक रही है चंद्रमा उसको देख करके लज्जित होकर के आकाश में उड़ गए। अतः उन नखों की चंद्रिका का सौंदर्य इतना है माधुर्य शीतलता इस चंद्र में नहीं। कमला कमल को काम को बढ़ाने वाला है किंतु सकाम भक्त भी यदि कृष्ण की भजन कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण कैसे है कोई सकाम भक्त भजन नहीं करे। मुक्ति के लिए भी भगवान यदि करता है भगवान का भजन तो कृष्ण क्या करेंगे उसको मुक्ति इत्यादि नहीं देते उसे अपने चरण का अमृत बनाकर देकर के और उसका कल्याण करते हैं। यहां तक कि ध्रुव जी सकाम उपासक थे सकाम रूप से उपासक किंतु भगवान ने कृपा की उनकी भी शिक्षा को भी पूर्ण करके और अपनी भक्ति दे देते हैं। ऐसे कृष्णचंद्र जी के चरण कमल दयालु हैं। कहते हैं कि ऐसे इनके चरण कमल हैं हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में सकृत एव प्रपन्ना प्रपन्नाय तपास्मी चित जाचते अभयम सर्वम भूतभ्यो गदाम्ये तत् व्रतम्। हनुमान जी कहते हैं एक बार भी यदि रामचंद्र जी के चरणों में कोई भगवान के चरणों में प्रपन्न हो गया और अभय जाचना की उनके चरणों में शरणागत हो गया तो उसके दुखों को सदा दे दिए। हर बात कब की है विभीषण आया लंका से रावण ने उसे लात मारा तू अभी भी हमको परामर्श देता है सीता को देने के लिए तू उसी का गुप्तचर है तुमको भी वध कर देंगे। बस अपने मंत्रियों के साथ में विभीषण रामचंद्र जी के पास में आए जितने रामचंद्र जी के सैनिक थे देखा उसको ऊपर में रोक दिया इसको उतरने मत दो। रामचंद्र जी के पास में गए बोला जैसे रावण का भाई आया है विभीषण आपसे मिलना चाहता है तो उन्होंने बुलाया सबसे पहले सुग्रीव को सुग्रीव से पूछा जैसे मुझे क्या करना चाहिए इसे मिलना चाहिए कि नहीं। सुग्रीव बोले जी मत मिलो क्योंकि यह शत्रु का भाई है आपका सारा भेद आपसे जान करके खोल करके आपको युद्ध में मरवा देगा आपकी हार हो जाएगी इन्हें शत्रुओं से पर विश्वास मत करो। अंगद नल नील इत्यादि सबको बुलाया सबसे पूछा किंतु किसी ने नहीं कहा जे बुलाओ। जब हनुमान जी को बुलाए तो हनुमान जी कहे प्रभो आप एक निमेश में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय करने वाले हैं आपको किस चीज का डर है आप तो हमारे समझ से उसको बुला लीजिए शत्रु भी है मित्र भी आपका क्या कर देगा एक बार भी कोई अभय याचना करता है तो अवश्य ही आप उनको शरणागति दीजिए। वही इसी के ऊपर है ایک بار بھی جدی میں تمہارا ہوں یہ کہہ دے کرشن تمہارا ہوں جدی بولے ایک بار کرشن کہہ دے ایک بار جدی کہہ دے ماں پربھو جی کہہ رہے ہیں بدھی راج خان کہہ دو شری کرشن بھی جائے کہاں سے ایک بار آتے پریم مور نندنندن کرشن بہت پرانا ایک بات کے
بھی
ماں پر کہہ رہے ہیں اس کے ونش کا میں وکت ہوا اس نے یہ کہا نندنندن ہمارے پرانا اس لیے اس کے ونشوں کے ہاتھ میں ایسے کرشن دیال میں ایک بار بھی آپ لوگ کوئی بھی جب یہ کہیں میں تمہارا جیسا بھی تمہارا ایک بار جب ہردے سے کہوں ضرور آپ کو گرہن کر یہی تو نہیں نکلتا ہے اسے ایک بار بھی نکل جائے ابھیم سروبھوت سمست پرانیوں کو ابھے پردان کرتا ہے جب رام چندر آشا کرتے ہیں کنتو رام چندر پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں بھروسہ ہو رہا ہے
سیتا جی دے دیا
ارے اپنی پران سے بھی پیاری سیتا جی کو اتنا کامے پر بھی اور کیا کیا بن میں پڑ گیا بیچاری سیتا جی روتی رہی کلپتی رہی سنجے یہ تو بڑا جیتی ہے یہ مانیں گے نہیں بھارت اس لیے اسے پرارتھنا کرنا بھی بیکار ہے روتی کلپتی رہ گئی کتنے برسوں والمیکی کے آشرم میں رہ گئی کنتو ان کو سرن لے کر کے پھر سے بلایا نہیں اس لیے ڈر لگتا ہے رام چندر جی سے ہم ان کے چرنوں میں شرناگت ہوئے میں نے بھی یہی سوچا میں پہلے انہی کا بھجن کرتا تھا میں ڈر گیا میں ڈر گیا کہ کہیں ان کو سرن میں گیا رکھ لیں گے آپ کچھ دنوں کے بعد میں ہماری کوئی غلطی ہو جائے گی اپرادھ ان کے چرن میں ہو گیا اور جب کہ نکلو بھاگو یہاں سے میں کیا کروں اس نے دیکھا کرشن ایسے ہیں اپچیت سو دوراچارو بھجتے مام انند بھار ساتھ وہ تو سادھو بول کر کہیں گرہن کر لیتے ہیں اور جنم جنم انتر میں کبھی نہیں چھوڑتے ہیں ایسے دیالو ہیں ایسے دیالو کے شری چرنوں کو چھوڑ کر کے کون دوسرے کا بھجن کر چرن کملوں میں ہم سبھی لوگ آتے ہیں متھرا کو بھی ہے ایک دن آ رہا ہے جو کرشن کے لیے کچھ بھی آدھے نہیں ہے کب پرسوں کا دن ہے اس دن ڈھلاؤ روپ سے جو کچھ آپ کہیں گے نا وہ دے دیں اور دنوں میں تو کچھ دے نہ دے سندے ہو سکتا ہے کنتو اس دن اپنے آدھی بھاؤ کے آنند میں نند بابا کی گودی میں جسودا جی کی گودی میں کھیلیں گے اور ایک وشیش اور لالسا ہے وہ بھی لالسا پوری ہو جائے گی دس بارہ برسوں میں اس لیے بڑے آنند ہیں اس دن جو کچھ مانگیں گے نا وہ سب کچھ دے دیں اس لیے آپ لوگ یہیں کے چرن کملوں کی سیوا برج میں چرن کملوں کی سیوا یہ مانگ اور اس سے بھی ابھی کچھ ہے تو آپ لوگ سمجھ بوجھ کر کے وچار کر کے مانگ لیں گے وہ بھی بھول دیتے
دس بارہ برس میں کیا پوری ہو جائے گی
بہو پرما آنند
Yeah.